ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारत और नामीबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता किया। इस अवसर पर CDRI और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में नामीबिया के शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र भी प्रस्तुत किए गए। नामीबिया की राजधानी विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने विंडहोक स्थित राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एकरे में नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में शैक्षणिक ज्ञान को सामाजिक कल्याण के साथ जोड़कर समाज की आकांक्षाएं और ऊर्जा आवश्यकताएं पूरा करने वाली स्मार्ट रणनीति बनाने की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत केवल एक तिहाई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारी समितियों से जुड़ी महिलाओं और अन्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री शाह ने कच्छ जिले की ऊंट प्रजनक मालधारी सहकारी समिति की मीरल बेन रबारी से भी बातचीत की। श्री शाह ने बताया कि गुजरात और राजस्थान सरकार मिलकर देश भर के ऊंट प्रजनकों से दूध एकत्र करने की योजना बना रही है।
ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा।
वायुसेना के जगुआर प्रशिक्षक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच दल गठित किया गया है। राजस्थान के चूरू के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान ये विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में दोनों पायलट गंभीर रूप से घायल हैं। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वडोदरा में पुल ढहने की दुखद घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। श्री पटेल ने अधिकारियों से प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने सड़क और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से राज्य के अन्य जर्जर पुलों का विवरण मांगा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये देने को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन द्वारा आज बुलाए गए बिहार बंद का मिला जुला असर रहा। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही और यातायात बाधित किया। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने बंद और चक्का जाम का आह्वान किया था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 195 अंक गिरकर 83,516 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46 अंक कम होकर 25,476 पर आ गया। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि खेलो भारत नीति 2025 के अंतर्गत सरकार न केवल प्रतिभाओं की तलाश के लिए बल्कि विश्वस्तरीय कोचिंग और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उन्हें बनाए रखने के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रतिभा को उजागर करने तथा सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज रात 11 बजे मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।